गणतंत्र ईरान की आवाज।
जहरा जैदी और साथी रेडियो तेहरान के सभी श्रोता मित्रों की सेवा में सलाम प्रस्तुत करते हैं। श्रोताओं, आज भी अपने कार्यक्रम का आरंभ हम कुरान मजीद की पवित्र आयतों की तिलावत और उनके अनुवाद से कर रहे हैं। सूरह आले इमरान की आयत क्रमांक 102 से 104 तक की तिलावत करके आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है कारी मोहम्मद सिद्दीक मिनशावी ने।
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون
صدق الله العظيم
الله کے نام سے जो अत्यंत कृपाशील और दयावान है। हे ईमान वालों, ईश्वर से वैसे डरो जैसे उससे डरना चाहिए और मुस्लिम रहते हुए ही मरना, और तुम सब मिलकर ईश्वर की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और बिखरो नहीं, और अपने ऊपर ईश्वर की उस विभूति को याद करो जब तुम एक दूसरे के शत्रु थे तो उसने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम जगाया, तो तुम उसकी विभूति की छाया में एक दूसरे के भाई बन गए, जैसा कि तुम नरक की कगार पर थे और ईश्वर ने तुम्हें उससे मुक्ति दिलाई। ईश्वर अपनी निशानियों को इस प्रकार तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से वर्णित करता है कि शायद तुम लोग मार्गदर्शित हो जाओ, और तुम मुसलमानों के बीच एक ऐसा गुट होना चाहिए जो लोगों को भलाई का निमंत्रण दे, अच्छे कार्यों की ओर आमंत्रित करे और बुराइयों से रोके, और ऐसे ही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओं, हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9510 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@wsirib.ir। श्रोताओं, आज रविवार है, तीर मास की 6, ज़िकादा की 16 और जून की 27 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लीजिए। हमेशा की तरह सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे, फिर आप सुनेंगे संक्षिप्त कार्यक्रम अनमोल बातें, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम। दोस्तों, उसके बाद हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होगा कुरान ईश्वरीय चमत्कार, और सभा के अंत में आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आज कल। अब आप रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले ने भारत सरकार और सेना को गहरी चिंता में डाल दिया है। तेहरान ने कोरोना के विभिन्न टीकों के उत्पादन को ईरानी वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण सफलता करार दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि ईरान, चीन और रूस विश्व मंच पर अमेरिका को जलील कर रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के 5 अन्य जिलों पर कब्जा कर लिया है। और अब आप मरियम मेहरदादिया और हसन अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
भारत नियंत्रित जम्मू कश्मीर के जम्मू एयरपोर्ट पर स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि शनिवार देर रात केवल 5 मिनट के अंदर 2 बड़े हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। पहले विस्फोट के कारण हवाई अड्डे के तकनीकी क्षेत्र में एक इमारत की छत ढह गई। इस स्थान की देखरेख की जिम्मेदारी वायुसेना की है, जबकि दूसरा विस्फोट जमीन पर हुआ। अभी तक हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सूत्रों का कहना है कि इस विस्फोट के लिए 2 ड्रोनों का इस्तेमाल किया गया था और टारगेट भारतीय वायुसेना के विमान थे।
ईरान की संसद में चिकित्सा उपचार व मेडिकल शिक्षा के आयोग के प्रमुख ने कहा है कि ईरान के युवा वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हुसैन अली शारियारी ने रविवार को तेहरान में कोरोना की नूरा नामक वैक्सीन के अनावरण के अवसर पर ईरान प्रेस से बात करते हुए ईरान में कोरोना के विभिन्न टीकों की तैयारी की अहमियत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस वक्त ईरान में कोरोना के 6 टीके बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान में मेडिकल के अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनजर जब भी किसी वैक्सीन की तैयारी की जरूरत हो, ईरानी वैज्ञानिक उसे तैयार कर सकते हैं और विदेश से उसे मंगाने की जरूरत नहीं होगी। ईरान की संसद में चिकित्सा उपचार व मेडिकल शिक्षा के आयोग के प्रमुख ने आशा जताई कि विभिन्न टीकों की तैयारी दुनिया में ईरान का गौरव होगा और ईरान कोरोना की वैक्सीन निर्यात करने वाले देशों में शामिल होगा।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी एक प्रचारिक रैली में कहा है कि ईरान, चीन और रूस विश्व मंच पर अमेरिका को जलील करते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से निकलने के बाद ओहायो राज्य में अपनी पहली प्रचारिक रैली में बाइडेन सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया कि अगर सन 2020 के चुनाव में धांधली न हुई होती तो वह एक हफ्ते के अंदर ईरान से समझौता कर लेते। उन्होंने बाइडेन सरकार की नीतियों को भयावह बताते हुए कहा कि ईरान, चीन और रूस विश्व स्तर पर अमरीका को अपमानित कर रहे हैं और बाइडेन अपनी वर्तमान नीतियों पर अमल करके अमरीका को तबाह कर रहे हैं। ट्रंप ने बाइडेन सरकार के पिछले 5 महीने के कामों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से एक बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा कि अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, हत्या और अपराधों के आंकड़ों में वृद्धि हो गई है, विदेशी सीमाएं पार कर करके हमारे देश में घुस रहे हैं और अब तक किसी ने भी इस तरह की घटनाएं नहीं देखी हैं। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते में अमरीका की संभावित वापसी के बारे में कहा कि इस समय अमरीका इस समझौते में वापस लौट रहा है और इससे या तो इसराइल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा या फिर एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी।
अफगानिस्तान के स्थानीय सूत्रों ने बताया कि वर्दक प्रांत के सैयदाबाद और चक कंदर प्रांत के मारूफ और गोरक और तखार प्रांत के रस्ताख जिले पर तालिबान गुट का कब्जा हो गया है। वर्दक की प्रांतीय परिषद के उप प्रमुख मोहम्मद सरदार बख्तियारी ने बताया है कि इस प्रांत के सैयदाबाद और चक जिले तालिबान के कब्जे में चले गए हैं। उन्होंने बताया कि सैयदाबाद जिले के तालिबान के हाथ में जाने के बाद गजनी मैदान शहर राजमार्ग का एक बड़ा हिस्सा भी तालिबान के नियंत्रण में आ गया है। कंदार की प्रांतीय परिषद के सदस्य अहमद शाह खान ने भी बताया कि इस प्रांत के मारूफ व गुरुख जिलों पर तालिबान का कब्जा हो गया है। तालिबान का दावा है कि कंदार के खाखरी जिले पर भी उसका कब्जा हो गया है, लेकिन स्थानीय सूत्र ने इसकी पुष्टि नहीं की है। तखार की प्रांतीय परिषद के सदस्य सलाउद्दीन बुरहानी ने भी बताया कि इस प्रांत का रस्ताख जिला तालिबान के हमले के बाद इस गुट के हाथ में चला गया है।
अफगानिस्तान के समंगान प्रांत के लोगों ने भी तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। समंगान की प्रांतीय परिषद के प्रमुख राज मोहम्मद मुवाहिदी ने बताया कि प्रांत के दर्रे सूफ जिले के 2000 लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और वे तालिबान के खिलाफ जंग में शामिल हो गए हैं। इस बीच समंगान प्रांत के पुलिस प्रवक्ता अब्दुल मुनीर रहीमी ने भी कहा है कि दर्रे सूफ के ये लोग शनिवार को तालिबान के साथ टकरा गए और इस झड़प में 30 तालिबान मारे गए जबकि 10 अन्य घायल हुए। 2 हफ्ते पहले समंगान प्रांत के इस जिले पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था और अब तक वो ये जिला इसी गुट के कब्जे में था। अब तक अफगानिस्तान के विभिन्न जिलों के 10,000 लोग तालिबान के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं और वे तालिबान के कब्जे से विभिन्न इलाकों को आजाद कराने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के 80 से ज्यादा जिलों पर कब्जा कर रखा है।
मिस्र के राष्ट्रपति इराक में 3 अरब देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बगदाद पहुंचे गए। फास्ट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता सीसी को लेकर उनका विशेष विमान कुछ देर पहले ही बगदाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। रिपोर्ट में बताया जाता है कि जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला द्वितीय भी कुछ देर बाद बगदाद पहुंच रहे हैं। इराक की वा न्यूज एजेंसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के बगदाद पहुंचने की तस्वीर जारी करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति बरहम साले ने बगदाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया।
इराक के स्थानीय सूत्रों ने रिपोर्ट दी है कि बगदाद में अमरीकी सेना के एक कारवान पर हमला किया गया है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के स्थानीय सूत्रों ने रविवार की सुबह अमरीकी सैन्य कॉन्वॉय पर हमले की सूचना दी। साबिरीन न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में लिखा कि अमरीकी सेना के कॉन्वॉय को सड़क के किनारे लगे बम का निशाना बनाया गया। इराक में अमरीकी सेना के कॉन्वॉय पर हमले ऐसी स्थिति में हो रहे हैं कि वॉशिंगटन इराक से अपने सैनिकों को निकालने के लिए इराक और अमरीका के बीच रणनीतिक वार्ता को विलंबित करने का प्रयास कर रहा है।
हमलावर सऊदी गठबंधन ने दक्षिणी सऊदी अरब में यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों के मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबर दी है। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी मीडिया ने रविवार की सुबह हमलावर सऊदी गठबंधन के ठिकानों पर यमन के ड्रोन हमलों की खबर दी है। स्काई न्यूज एजेंसी ने सुबह 1 बजे अपनी रिपोर्ट में सऊदी गठबंधन के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि यमनी सेना की ओर से एक आत्मघाती ड्रोन दक्षिणी सऊदी अरब के नजरान सेक्टर भेजा गया। सऊदी गठबंधन ने हमेशा की तरह इस बार भी दावा किया कि ड्रोन विमान को लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया। अल जजीरा नेटवर्क के अनुसार हमलावर सऊद गठबंधन ने अपने दावे में कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाइयां करते रहेंगे।
सीरिया में होने वाले बम धमाके में कई लोगों के हताहत व घायल होने की सूचना है। सीरिया में होने वाले धमाके में कई लोग हताहत व घायल हो गए। सीरिया की सरकारी समाचार एजेंसी साना ने रिपोर्ट दी है कि सीरिया के शहर इफरीन में कल रात होने वाले कार बम के धमाके में एक बच्चे समेत तीन लोग मारे गए जबकि कई अन्य घायल हो गए। सीरिया के शहर इफरीन पर तुर्की और उसके समर्थित आतंकवादियों का नियंत्रण है और इसी वजह से इस शहर में मोटरसाइकिल और कार बम धमाके होते रहते हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान तुर्की की ओर से सीरिया की धरती पर हमले का क्रम जारी है और अब भी सीरिया के उत्तरी क्षेत्रों में तुर्की की सेना तैनात है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बोर्डिंग स्कूल में सामूहिक कब्रें मिलने की घटना का जिम्मेदार कैथोलिक चर्च को करार दिया है और कहा है कि पोप खुद आकर स्थानीय लोगों से माफी मांगे। फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के प्रधानमंत्री ने स्थानीय लोगों से उनके बच्चों के मारे जाने की घटना पर माफी मांगने के बजाय वेटिकन को घटना का जिम्मेदार करार दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पोप फ्रांसिस से कहा है कि वो खुद कनाडा की यात्रा करें और बोर्डिंग स्कूल के प्रबंधन में कैथोलिक चर्च की भूमिका की वजह से स्थानीय लोगों से आधिकारिक रूप से माफी मांगे क्योंकि इसी बोर्डिंग स्कूल में प्रांगण से बच्चों की सामूहिक कब्रों का पता चलता है। उन्होंने ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं सीधे पोप फ्रांसिस से बात करूंगा ताकि इस विषय पर उन पर दबाव डाल सकूं कि केवल माफी मांगनी ही जरूरी नहीं है बल्कि वो इस देश में आकर स्थानीय लोगों से खुद माफी मांगे। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ انمول باتیں۔ दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल बातें की एक अनकड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज के कार्यक्रम में हम दोस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है हमारा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, इंसान एक सामाजिक प्राणी है और जो इंसान समाज में रहता है वो अपने जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी की मदद के बिना अपने जीवन की समस्त आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर ले और उसे किसी की आवश्यकता न पड़े। दूसरे शब्दों में, एक दूसरे की मदद के लिए बिना सामाजिक जीवन ही नहीं चल सकता। अंततः अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान को दूसरों की जरूरत है। जिन लोगों से इंसान अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है और उनमें से एक उसका मित्र भी है। मित्र इंसान के जीवन को परिपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर इंसान को मित्र सही मिल जाए तो नारकीय इंसान स्वर्ग में जाने वाला बन सकता है और अगर दोस्त बुरा मिल जाए तो स्वर्ग में जाने वाला नरक में जा सकता है। यही वजह है कि परलय के दिन बहुत से लोग कहेंगे कि काश हमने अमुक व्यक्ति के साथ दोस्ती न की होती, यानी बुरी संगत ही उनके नरक में जाने का कारण बनेगी। इसलिए दोस्त के चयन में बहुत ही सावधानी से काम लेने की जरूरत है क्योंकि अगर इंसान ने दोस्त के चयन में गलती कर दी तो उसे ऐसी क्षति का सामना करना पड़ सकता है कि जिसकी भरपाई असंभव होगी या बहुत कठिन होगी। इसलिए दोस्त के चयन में बहुत ही सतर्कता व जागरूकता से काम लेने की जरूरत है। इमाम हुसैन अली सलाम फरमाते हैं कि इंसान को पहले पहचानो फिर दोस्ती करो, परंतु लगभग सभी इंसान पहले दोस्ती करते हैं और जब उनका दोस्त धोखा दे देता है या विश्वासघात कर देता है तो इंसान उस व्यक्ति से भी दोस्ती करने से डरता है जो दोस्ती के लायक होता है। परंतु अगर इंसान दोस्ती करने से पहले परख ले फिर दोस्ती करे तो उसे उस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारा बेहतरीन दोस्त वो है कि जिसकी सच्चाई तुम्हें सच्चाई के लिए और उसके अच्छे कार्य तुम्हें भलाई के लिए प्रेरित करें। हजरत अली अलैहिस्सलाम की इस हदीस से भली भांति समझा जा सकता है कि ऐसे इंसान से दोस्ती करनी चाहिए जो सच्चा और भला कार्य करने वाला हो। इस प्रकार की वो सच्चाई और भले कार्य में दूसरों का आदर्श बनने का लायक हो। परंतु बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है कि हमारे समाज में बहुत से लोग ऐसे इंसान से दोस्ती कर बैठते हैं जो दोस्ती के लायक नहीं होते, और वे मात्र चिकनी चुपड़ी बातें हैं जिसके धोखे में आकर इंसान उससे दोस्ती कर बैठता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईश्वर जिसे भलाई प्रदान करता है और करना चाहता है उसे योग व अच्छा दोस्त प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में भला व अच्छा दोस्त महान व सर्वसम्मत ईश्वरी भलाई की ओर से प्रदान किए जाने वाला उपहार है। कितने अच्छे व खुशनसीब वे लोग हैं जिनके पास अच्छे दोस्त हैं, यानी अच्छे दोस्त का मिल जाना भाग्यशाली होने की अलामत है। حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ ہے بیٹے، ہزار دوست بنا اور ہزار دوست بھی کم ہیں، پرنتو ایک بھی دشمن نہ بنا کہ ایک دشمن بھی ادھک ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ادھک متر ہونا انسان کی خوش نصیبی میں سے ہے۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے کاریکرم کے آرمبھ میں کہا تھا کہ انسان ایک سماجک پرانی ہے، اور جس انسان کے ادھک دوست ہوتے ہیں اس کے دوست ہی اس کے جیون کی بہت سی سمسیاؤں کا سمادھان کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ادھک سے ادھک لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے، پرنتو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ برے انسان سے دوستی نہ ہونے پائے، انتھا انسان کو ایسی شتی پہنچ سکتی ہے جس کی بھرپائی اسمبھو یا کٹھن ہو سکتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک استھان پر فرماتے ہیں کہ اکیلے رہنے سے بہتر ایک اچھا دوست ہے، کنتو ایک برے دوست کے ساتھ رہنے سے اکیلے رہنا بہتر ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تمہارا سچا دوست ہوگا وہ تمہیں برے کاریوں سے روکے گا، اور جسے تم سے دویش ہوگا وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ اس حدیث سے یہ بات بھلی بھانتی اسپشٹ ہے کہ اچھے دوست کی ایک وشیشتا یہ ہے کہ وہ برے کاریوں سے روکتا ہے۔ تو اگر کوئی اپنے دوست کو برے کاریوں سے نہیں روکتا ہے تو وہ واسطوں میں انسان کا سچا دوست نہیں ہوتا ہے، یدی بھی انسان اسے اپنا اچھا و سچا دوست ہی کیوں نہ سمجھتا ہو۔ بہرحال جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے جیون میں سفل رہے اور اس کے دوست اچھے ہوں، تو اسے چاہیے کہ دوستی کرنے میں بہت ہی سترکتا سے کام لے اور دوستی کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ تو دوستوں، آج کے کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ اگلے کاریکرم تک کے لیے ہمیں انومتی دیں۔ خدا حافظ۔ یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रतिरोध समर्थक साइटों और चैनलों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद सामने आए उसके आतंकवाद समर्थक चेहरे की और फिर बात करेंगे फिलिस्तीन की कि जहां नजार बनात की हत्या के बाद आम लोगों का गुस्सा भड़कता ही जा रहा है اور انت میں چلیں گے بھارت جہاں کشمیر میں ایک سین ایئر بیس پر ہوئے حملے کے بعد پورے کشمیر میں بھے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے
بھارتی ایئر فورس کے کنٹرول میں جموں ایئرپورٹ پر.
تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ کے آتنکواد سمرتھک رویے کی. ایک اور امریکی سرکار جہاں آتنکواد ویرودھی سماچار سائٹوں اور چینلوں پر پرتیبند لگا رہی ہے, وہیں سوشل میڈیا پر ورشوں سے سکریہ داعش اور اس سے سمبندھت گٹوں کی سائٹوں کو کھلی چھوٹ دیے ہوئے ہے. اس سمبندھ میں بغداد سے آئی آر آئی بی کے سنواددتا جلال خالدی ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اختر عباس کی آواز میں.
کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے آج تک داعش سے سمبندھت سماچار سائٹوں کو بند کرنے کے لیے کوئی کاروائی نہیں کی ہے, جبکہ اسی امریکہ نے داعش ویرودھی بہت ساری سائٹوں کو بند کر دیا ہے. امریکہ کی اس دوہری نیتی کے خلاف عراق کی راجنیتک ہستیوں اور سینے ادھیکاریوں نے کڑی پرتکریائیں ویکت کی ہیں.
موقع اعماق للارہابیین لازال یعمل لحد الان.
داعش کے آتنکوادیوں سے سمبندھت اعماق نامک سائٹ 2014 سے آج تک سوشل میڈیا پر سکریہ ہے. حالانکہ امریکہ نے حال ہی میں عراق کی دسیوں سماچار سائٹوں کو بند کر دیا ہے. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ اور اس کے سہیوگی کیا واسطوں میں داعش کی سائٹوں کو بند نہیں کر سکتے؟ یہ مدعا بہت ہی حیران کرنے والا ہے. پچھلے دنوں امریکہ کی آتنکی سرکار نے 33 سماچار سائٹیں جس میں عراقی, لبنانی, ایرانی, بحرینی اور یمنی شامل ہیں انہیں اچانک بند کر دیا. انہیں بند کرنے کے کارنوں کو عراقی اس طرح بیان کرتے ہیں. دسیوں سماچار سائٹیں کی جنہیں امریکہ نے بند کر دیا ہے واسطوں میں وہی سائٹیں ہیں جو آتنکوادیوں کے خلاف گتیویدھیاں انجام دے رہی تھیں. امریکہ اور اس کے ایجنٹ اب آتنکوادیوں کو ملتی ہار اور پرتیرودھ سمرتھک سنچار مادھیموں سے مقابلے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں.
الشرکات الام التي تتحكم اليوم بالسوشل ميديا.
وہ کمپنیاں جن کے پاس سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا ادھیکار ہے انہیں امریکی سرکار دوارا ہی سنچالت کیا جاتا ہے. ان کا ادیش کیول شیتر میں اسرائیل کی خفیہ شڈینترکاری یوجناؤں کو لاگو کرنا ہے. کافی ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر تھوڑا سا سمے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی بڑی سنکھیا میں آتنکوادیوں سے سمبندھت سائٹیں سکری ہیں جو پوری آزادی کے ساتھ عراق, لبنان, سیریا اور یمن میں انجام دی جانے والی آتنکوادی کاروائیوں کا پرچار پرسار کر رہی ہیں. انہیں امریکہ دوارا ان کی سائٹوں کے بند ہونے کی کوئی چنتا نہیں ہے. آتنکوادی گٹ داعش کی سوشل میڈیا پر 11 سے زیادہ سماچار سائٹیں ہیں اور یہ سبھی سماچار سائٹیں سکریہ ہیں. امریکہ کی آتنکوادی سرکار نے ان سماچار سائٹوں کو بند کرنے کو لے کر نہ کیول یہ کہ کوئی کاروائی نہیں کی بلکہ بنا ہچکچاہٹ کے انہیں اسلامی اسٹیٹ کا نام دے رہی ہیں.
جلال خالدی, خبرگزاری صدا و سیما, بغداد.
اور اب چلتے ہیں فلسطین اور بات کرتے ہیں ورشٹھ فلسطینی کارکرتا نزار بنات کی ہتیا کے بعد فلسطینی پرشاسن کے خلاف عام لوگوں کے پھوٹے غصے کی. اس بارے میں فلسطین سے آئی آر آئی بی کے سنواددتا خالد صبرنا ادھک جانکاری دے رہے ہیں ہمارے ساتھی محمد مہندی کی آواز میں.
يزداد الفعل الشعبي المناهض للسلطة.
نزار بنات کی ہتیا کو لے کر فلسطینی پرشاسن کے خلاف عام لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے. پردرشنکاری سرکشا بلوں سے بھڑ گئے اور انہوں نے ان پر پتھر پھینکے اور ان پر امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ ہونے کا آروپ لگایا. ساتھ ہی فلسطینی پرشاسن کے پرمکھ محمود عباس سے مانگ کی ہے کہ زانی شاسن کے ساتھ سرکشا سمنوے اور نزار بنات کی ہتیا میں ان کی بھومیکا کے کارن انہیں اپنے پد سے تیاگ پتر دے دینا چاہیے. اس کے ایک ورشٹھ نیتا کا کہنا ہے کہ شہید نزار بنات کی اس طرح بےرحمی سے کی گئی ہتیا کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. راشٹر اس طرح کے اپرادھوں پر کبھی خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے اور اس کا ادھارن ویسٹ بینک اور غزہ میں ہونے والے پردرشن ہیں.
وکانت الضفۃ الغربیہ تشہد حالۃ غلیان.
فلسطینی کارکرتا نزار بنات کی ہتیا سے پور ویسٹ بینک میں پہلے سے ہی فلسطینی پرشاسن اور اس کے پرمکھ محمود عباس کے فلسطینی ہیتوں اور پرتیرودھ کے سمبندھ ان کے نکاراتمک رخ کے خلاف لوگوں میں آکروش دیکھا جا رہا تھا. وشیش روپ سے اسرائیل دوارا اوائدھ روپ سے ویسٹ بینک اور بیت المقدس میں نرمان کی جا رہی کالونیوں اور شیخ جرہ علاقے سے فلسطینیوں کو زبردستی نکالے جانے پر فلسطینی پرشاسن کی چپی نے عام لوگوں کے غصے کو اور زیادہ بھڑکا دیا ہے.
جبل کامل من الفساد.
ایک فلسطینی کارکرتا کا کہنا ہے کہ رشوت لینا، پکشپات اور دھوکہ دھڑی فلسطینی پرشاسن کی پہچان بن گئی ہے. ہم ان پردرشنوں کے ذریعے چاہتے ہیں کہ نزار بنات کی ہتیا کی صحیح جانچ ہو اور دوشیوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. نزار بنات کی ہتیا کے بعد فلسطینی جنتا کا غصہ ساتویں آسمان پر ہے. رام اللہ میں بھی استھتی اشانت بنی ہوئی ہے اور عام لوگوں میں آکروش کی آگ بھڑکتی جا رہی ہے.
خالد صبرنا، خبر گزاری صدا وسیما، فلسطین.
اور اب رک کرتے ہیں بھارت کا اور بات کرتے ہیں بھارت پر شاست کشمیر میں ایئر بیس پر ہوئے ڈرون سے حملے کی. جموں استھت کڑی سرکشا والے ایئرپورٹ پر ہوئے دو دھماکوں سے پورے بھارت میں سنسنی پھیل گئی ہے. اس بارے میں وستار سے جانکاری دے رہے ہیں شری نگر سے ہمارے سنواددتا سپت محمد حسن.
بھارتی ایئر فورس کے کنٹرول میں جموں ایئرپورٹ پر دو وسفوٹ ہوئے. جموں کشمیر کے سرمائی راجدھانی جموں میں اس سمے خوف و ہراس کی استھتی پیدا ہوئی جب فقط پانچ منٹ کے سمے کال کے بیچ انتہائی غیر معمولی سرکشا کے پربندھ میں استھت ایئرپورٹ پر دو دھماکے ہوئے جس میں سماچاروں کے انوسار دو سرکشا کرمی گائل ہوئے. سرکاری سوتروں کا کہنا ہے کہ یہ دھماکے سنیچر اتوار کی درمیانی رات کو ہوئے اور ان دھماکوں کے لیے ڈرون کا استعمال بھی عمل میں لایا گیا. فوری طور پر جانچ ایجنسیاں گھٹنا استھل پر پہنچی جنہوں نے جانچ آرمبھ کر دی ہے. این آئی اے ایجنسی کو جانچ کے آدیش دیے گئے ہیں اور انہوں نے جانچ آرمبھ کر دی ہے. سرکشا بلوں کے پروکتا کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے سیما پار وہ دشمن بھی ہو سکتے ہیں جو جموں کشمیر میں شانتی کو تتر بتر کرنا چاہتے ہیں، لہذا جانچ ایجنسیاں اس پر ہر ایک اینگل سے چیک کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بھی سوچنا ہوگی وہ پترکاروں کے سامنے رکھی جائے گی اور انہیں سوچت کیا جائے گا. اس بیچ وپکشی دلوں کے گٹھ بندھن پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلریشن نے کہا ہے کہ نئی دہلی میں بھارتیہ پردھان منتری کے ساتھ ان کی ملاقات ایک اچھے واتاورن میں ہوئی اور ہم نے انہیں بتا دیا کہ 5 اگست کو نئی دہلی نے جو نرنے لیا اس پر جموں کشمیر کے لوگ خوش نہیں ہیں اور وہ اسے کسی بھی حال میں سویکار نہیں کر رہے ہیں.
And I made it very clear. The first Prime Minister of India promised us plebiscite, but went back on it. Narasimha Rao ji, before election, promised us autonomy.
نئی دہلی سے واپسی کے بعد سری نگر میں پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے گپکار الائنس کے ادھیکش ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ بھارتیہ پردھان منتری نے سمے سمے پر جتنے بھی وعدے کیے وہ وفا نہیں ہوئے، اسی لیے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اٹھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ بھارتیہ پردھان منتری کو چاہیے کہ وہ زمین استر پر کچھ ایسا کریں جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ ان کا ہت سمجھ میں آ گیا ہے. اس اوسر پر نیشنل کانفرنس کے اپ ادھیکش عمر عبداللہ نے کہا کہ جب تک جموں کشمیر کو وشیش اختیارات واپس نہیں دیے جاتے ہیں وہ کسی بھی چناؤ میں بھاگ نہیں لیں گے.
As far as the delimitation commission is concerned, the party has made it very clear. They have authorized Dr. Saab to take a view as and when necessary. There has been no fresh approach to the national conference from the delimitation commission. As and when the delimitation commission makes an approach to the national conference, Dr. Saab has been authorized by the party to take a view.
انہوں نے کہا کہ ان کا دل الیکشن میں ضرور حصہ لے گا پرنتو میں ویکتیگت طور پر کسی بھی چناؤ میں تب تک حصہ نہیں لوں گا. انہوں نے کہا کہ الیکشن میں ہماری پارٹیسپیشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ ہم پر حکومت نہ کریں جنہیں نئی دہلی ہم پر حکومت کرنے کے لیے ہم پر مسلط کرنا چاہ رہی ہے. ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یہ بھی سویکار کیا کہ بھارتیہ پردھان منتری کے ساتھ وارتا کے دوران کوئی بریک تھرو سامنے نہیں آیا. محبوبہ مفتی اور محمد یوسف تارگامی نے بھی انہی شبدوں کا استعمال کیا ہے. سپت محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر.
دوستوں، اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا دینک کاریکرم یہیں سماپت ہوتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔ دوستو، ہماری آج کی سبھا کا انتیم کارکرم ہوگا آج کل، لیکن اس سے پہلے پرستوت ہے آپ کا من پسند کارکرم پران ایشوری چمتکار۔
قرآن ایشوری چمتکار۔
پری شروتاؤں، کارکرم قرآن ایشوری چمتکار کی ایک انیہ کڑی لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں، آشا ہے پسند کریں گے۔ ایشور کی کرپا سے قرآن مجید کے 17ویں سورے ارتھات سورہ اسراء کی آیتوں کی ویاکھیا سماپت ہوئی، اور اب ہم اگلے سورے ارتھات سورہ کہف کی آیتوں کی ویاکھیا آرمبھ کریں گے۔ ایشور کی اور سے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ سورہ بھیجنے کا کارن یہ بتایا گیا ہے کہ مکے کے انیک ایشور وادیوں نے کچھ لوگوں کو مدینہ نگر بھیجا تاکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری اور ان کی سچائی کے چنہوں کے بارے میں یہودیوں کے دھرم گروؤں سے پوچھیں۔
یہودی دھرم گروؤں نے ان سے کہا کہ محمد سے تین باتوں، اصحاب کہف ارتھات گفا والوں، ذوالقرنین تتھا روح ارتھات آتما کے بارے میں پرشن کرو۔ یدی انہوں نے پرتھم دو باتوں کے بارے میں جو کچھ ہم نے کہا ہے وہی بتایا اور روح کے بارے میں مون دھارن کیا تو سمجھ لو کہ وہ پیغمبر ہیں۔
جب وہ لوگ مکہ نگر واپس پہنچے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکت تین پرشن پوچھے تو ایشور کی اور سے یہ سورہ بھیجا گیا۔ اس سورے میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کی گھٹنا کے اترکت حضرت موسیٰ و حضرت خضر علیہ السلام کی گھٹنا کا بھی ورنن ہوا ہے۔ تو آئیے اس سورے کی آرمبھک تین آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، سمست پرشنسائیں اس ایشور کے لیے وشیش ہیں جس نے اس کتاب کو اپنے داس پر اتارا ہے اور اس میں کسی بھی پرکار کا دشا بھید نہیں رکھا ہے۔ یہ ایک سیدھی اور سٹیک کتاب ہے تاکہ برے کرم کرنے والوں کو اس کی اور سے کڑے دنڈ سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو اچھے کرم کرتے ہیں شبھ سوچنا دے دے کہ ان کے لیے بھلا پرتیفل ہے جس میں وہ سدیو رہیں گے۔
یہ سورہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایشوری سندیش وہی بھیجنے کے کارن ایشور کے گنگان اور اس کی پرشنسا کے ساتھ آرمب ہوا ہے، تاکہ ہم یہ سیکھیں کہ کیول بھوتک و سنسارک انوکمپاؤں کے لیے ایشور کے پرتی کرتگ نہیں رہنا چاہیے، بلکہ یہ جانا چاہیے کہ مارگ درشن کی انوکمپا سب سے بڑی انوکمپا ہے، اور وہ بھی ایسا مارگ درشن جو پورن روپ سے سنکلت و اسپشٹ روپ سے موجود ہے اور ہر پرکار کے دشا بھید سے سرکشت رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید ایک سدرڑھ و ٹھوس کتاب ہے جو ایک ویاپک دھرم پر آدھارت ہے۔
ایشور نے قرآن مجید میں انیک بار اسلام کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک سدرڑھ دھرم ہے اور سب سے سیدھی و ٹکاؤ راہ کی اور منشیہ کا مارگ درشن کرتا ہے۔ ये वही मार्ग है जो हर प्रकार की कमी और अतिशयोक्ति से परे है और पैगंबर स्वर्ग की शुभ सूचना देकर तथा नरक से डराकर लोगों के बीच आशा और भय की भावना को जीवित रखते हैं ताकि धर्म में संतुलन बना रहे।
इन आयतों से हमने सीखा कि कुरान मजीद की अनुकंपा इतनी महान व महत्वपूर्ण है कि ईश्वर ने इसके लिए स्वयं की सराहना की है।
पैगंबर द्वारा लोगों को स्वर्ग की शुभ सूचना देना और नरक से डराना उनकी अपनी ओर से नहीं बल्कि कुरान की ओर से है।
आइए अब सूरह कहफ की आयत नंबर 4 और 5 की तिलावत सुने।
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا।
और उन लोगों को डराए जो कहते हैं कि ईश्वर ने किसी को अपनी संतान बनाया है। इस संबंध में न तो उन्हें ज्ञान है और न ही उनके पूर्वजों को ज्ञान था। ये बहुत बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकली है। वे तो झूठ के अतिरिक्त कुछ कहते ही नहीं।
पिछली आयतों में पैगंबर द्वारा लोगों को स्वर्ग की शुभ सूचना देने और नरक से डराने के बारे में बिना किसी उदाहरण के उल्लेख किया गया था, किंतु इन आयतों में उनमें से एक विषय की ओर संकेत किया गया है और वो ईश्वर पर यह आरोप लगाना है कि उसने किसी को अपनी संतान बनाया है।
ये आरोप अनेकेश्वरवादी ईसाई और यहूदी सभी लगाते थे। अनेकेश्वरवादी फरिश्तों को ईश्वर की पुत्रियां समझते थे। ईसाई हजरत ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र तथा यहूदी एक अन्य ईश्वरीय दूत हजरत उजैर को ईश्वर का पुत्र कहते थे, जबकि यह आस्था न तो पवित्र आसमानी ग्रंथों से मेल खाती है और न ही बुद्धि व तर्क की कसौटी पर खरी उतरती है।
इन आयतों से हमने सीखा कि गलत व भ्रामक आस्थाओं से मुकाबला करना ईश्वरीय पैगंबरों का सबसे पहला दायित्व है और सबसे पदभ्रष्ट आस्था किसी को ईश्वर का समकक्ष समझना है, जबकि सबसे शुद्ध आस्था एक ईश्वरवाद पर विश्वास है।
आस्था ज्ञान के आधार पर होनी चाहिए, अन्यथा वो पदभ्रष्टता का कारण बन जाती है।
आइए अब सूरह कहफ की आयत नंबर 6 की तिलावत सुने।
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا।
तो हे पैगंबर, मानो आप इनके कार्यों के कारण अधिक दुख के चलते अपने प्राण ही खतरे में डाल देंगे यदि ये लोग इस बात पर ईमान न लाए।
यह आयत लोगों के प्रति पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहानुभूति को दर्शाती है। वे जब ये देखते थे कि अनेक ईश्वरवादी ईश्वर के सत्य कथन पर ईमान न लाकर उससे दूर हुए जा रहे हैं तो उन्हें बहुत दुख होता था। यद्यपि पैगंबर का दायित्व तो केवल ईश्वरीय संदेश को लोगों तक पहुंचा देना है और वे उन्हें सत्य बात को स्वीकार करने पर विवश नहीं कर सकते, किंतु जब वे ये देखते थे कि अधिकांश लोग ईमान नहीं लाते तो वे बहुत अधिक दुखी हो जाते थे, यहाँ तक कि उनकी जान को खतरा हो जाता था।
वे केवल अपने दायित्व के पालन के लिए नहीं बल्कि लोगों के मार्गदर्शन के प्रति अपने प्रेम व सहानुभूति के कारण उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास करते थे, किंतु जब उनके प्रयास विफल हो जाते तो उन्हें लगता कि उनका कोई अत्यंत निकटवर्ती परिजन तबाह हो रहा है, जिससे वे व्याकुल हो जाते थे।
इस आयत से हमने सीखा कि दूसरों के मार्गदर्शन के प्रति सहानुभूति और उनके पद भ्रष्ट होने पर दुखी होना एक मूल्यवान बात है और ईश्वरीय पैगंबर मानव जाति में सबसे अधिक सहानुभूति रखने वाले लोग थे।
धार्मिक नेताओं और धर्म के प्रचारकों को सदैव ही लोगों की आस्थाओं और कर्मों में सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए, चाहे उनके प्रयास सफल हों या न हों। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔
آج کل
دوستو، کاریکرم آج کل میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کے کاریکرم میں ہم کورونا مہاماری سے ہونے والے نقصان کے بارے میں چرچا کریں گے۔ مریم مہردادی اور غائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے۔
کورونا وائرس ایسی وشو ویاپی مہاماری ہے جس نے جیون کے لگ بھگ ہر کھیتر کو پربھاوت کیا ہے۔ کورونا کی وجہ سے جہاں شکشا اور ویاپار جیسے کھیتروں پر برا اثر پڑا ہے، وہیں پر پریٹن کا کھیتر بھی کورونا کے دشپریناموں سے اچھوتا نہیں رہ پایا ہے۔ جبکہ پریٹن ان کھیتروں میں سے ہے جو دیش اور سماج کے وکاس کا بہت ہی مہتوپورن مادھیم ہے۔ پریٹن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملا ہوا تھا۔ دوسرے شبدوں میں پریٹن ادیوگ کے ٹھنڈے پڑ جانے کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں۔
دویتیہ وشو یدھ کے بعد پریٹن ادیوگ کو دنیا کے آرتھک وکاس کا ایک مہتوپورن سروت سمجھا جاتا ہے۔ پریٹن ادیوگ کا دنیا کے آرتھک وکاس میں چوتھا یا دوسرا ستھان ہے۔ بہت سے کاریوں و سیواؤں کا سمبندھ پریٹن ادیوگ سے ہے۔ جب سے کورونا مہاماری کا قہر وشو ویاپی ہو گیا ہے، تب سے پریٹن اور یاترا کے کھیتر میں بہت سی سمسیائیں اتپن ہو گئی ہیں۔ بہت سے پریٹن کیندر بند کر دیے گئے ہیں۔ پریٹن کیندروں کے بند ہونے کے کارن سیلانیوں کی یاترائیں بھی بند ہو گئی ہیں۔ سیلانیوں کی یاترا بند ہونے کے کارن کھانا پینا، بھرمن، سیر سپاٹا اور پریٹن سے سمبندھت دوسری سمست سیوائیں بند ہو گئی ہیں۔
کورونا کا ابھیشاپ پھیل جانے اور وبھن کھیتروں میں سیمتتائیں اتپن ہو جانے کے کارن پریٹن ادیوگ سے جڑے 7.5 کروڑ سے ادھک لوگوں کو روزگار کے ختم ہو جانے کا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ موجود آنکڑے اس بات کے سوچک ہیں کہ کورونا کے کارن 2.1% ٹریلین ڈالر کی کھتی پریٹن ادیوگ کو پہنچ چکی ہے۔ وشو ویاپار سنگٹھن نے چیتاونی دی ہے کہ یہ کھتی 2.2 ٹریلین ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔
دوستو، وشو کے ان دیشوں کو بہت ادھک کھتی پہنچی ہے جن کے گھریلو سکل اتپاد کا بڑا بھاگ پریٹن ادیوگ پر نربھر ہے، جیسے کہ میکسیکو، اسپین، اٹلی اور آسٹریلیا آدی۔ اسی پرکار جرمنی، بریٹین، فرانس، برازیل، جاپان، بھارت، کینیڈا، روس اور دکشن کوریا کی اور بھی سنکیت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان دیشوں کی آرتھک ستھتی بھی کافی سیما تک پریٹن ادیوگ سے جڑی ہے۔ کورونا مہاماری کی وجہ سے عام طور پر کوئی ویکتی سیر سپاٹے کے لیے ان دیشوں کی یاترا نہیں کر رہا ہے۔
اس سمے بہت سے دیشوں میں بہت سے لوگوں کو کورونا کی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ اس بات کے درشٹیگت کچھ دیش اپنے پریٹن ادیوگ کو پھر سے آرمبھ کرنے کے پریاس میں ہیں۔ ساتھ ہی کورونا مہاماری کا قہر اتنا بھیاوا ہے کہ بہت سے لوگ ڈر گئے ہیں اور وہ گھومنے پھرنے پر اپنے گھروں میں بنے رہنے کو پراتھمکتا دے رہے ہیں۔ لوگوں کے اندر اس پرکار کا بھے یاترا نہ کرنے کا کارن بنا ہے۔ اسی کارن جن دیشوں کو بہت ادھک آرتھک کھتی پہنچی ہے، وہ پریٹکوں کو آکرشت کرنے کے پریاس میں ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جو کاری کیے ہیں ان میں سے ہم کچھ کی اور سنکیت کر رہے ہیں۔
ازبکستان نے ودیشی پریٹکوں کو آشواسن دیا ہے کہ اگر کوئی اس دیش میں कोरोना 19 से संक्रमित हो जाता है तो वो उसके उपचार के लिए $30,000 देगा। ये पैसा बीमारों के उपचार और उसके स्वदेश लौटने पर खर्च किया जाएगा। इटली के दक्षिण में स्थित सिसिली द्वीप ने घोषणा की है कि अगर कोई विदेशी पर्यटक यहाँ आता है और यहाँ आने पर वो COVID-19 से ग्रसित हो जाता है तो इटली आने के लिए उड़ान पर जो पैसा खर्च हुआ है उसका आधा वो देगा। इसी प्रकार सिसिली द्वीप ने घोषणा की है कि होटल में रुकने पर जो पैसा खर्च हुआ है वो उसका एक तिहाई अदा करेगा। इसी प्रकार सिसिली ने घोषणा की है कि संग्रहालय और प्राचीन वस्तुओं को देखने का टिकट फ्री होगा।
जापान ने घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कैंपेन आरंभ कर रखा है। इस कैंपेन ने घोषणा की है कि जो जापानी भ्रमण के लिए आएंगे वो उनके आधे खर्च का वहन करेगा। इसी प्रकार साइप्रस ने भी पर्यटन उद्योग को जीवित करने के उद्देश्य से ये घोषणा की है कि जो भी भ्रमण करने के लिए इस देश की यात्रा पर आएगा वो होटल में रुकने, खाने पीने और चिकित्सा के समस्त खर्चों को अदा करेगा, परंतु देश में प्रवेश से पहले यात्रियों का कोरोना टेस्ट लिया जाएगा। साइप्रस ने घोषणा की है कि इसी प्रकार 100 बेड के एक अस्पताल को कोरोना से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों के लिए दृष्टिगत रखा गया है जिसमें कोरोना से संक्रमित लोगों का उपचार किया जाएगा।
ईरान में कोरोना को लेकर संवेदनशीलता अब भी मौजूद है और सीमितता और कोरोना गाइडलाइंस का अब भी पालन किया जा रहा है और ईरान के पर्यटन उद्योग को कोरोना से मुकाबला करने वाले आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा है। प्राप्त रिपोर्टें इस बात की सूचक हैं कि कोरोना से ईरान के पर्यटन उद्योग को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है और प्रतीत ये हो रहा है कि इससे अधिक नुकसान वहन करने की क्षमता नहीं रखता है। इस उद्योग में सक्रिय लोग कोरोना संकट से उबर जाने के बाद का कार्यक्रम तैयार करने में लग गए हैं।
दोस्तों, आपको अवश्य याद होगा कि कार्यक्रम के आरंभ में हमने बताया था कि कोरोना ने इंसान के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। इस बात के दृष्टिगत ऐसा लगता है कि बहुत से पर्यटक अधिक दिनों के बजाय कम दिनों तक रुकने को प्राथमिकता देंगे। इसी प्रकार बहुत से पर्यटक अपनी निजी गाड़ियों और साधनों से यात्रा करने को ही प्राथमिकता देंगे। ये सैलानी खाने पीने की चीज़ों को अपने साथ लाना पसंद करेंगे जिन्हें उन्होंने स्वयं तैयार किया होगा। इसी प्रकार ये सैलानी अपने साथ चिकित्सा की ज़रूरी चीज़ें लेकर चलने को प्राथमिकता देंगे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कोरोना के बाद अध्ययन और मार्गदर्शकों के अनुभवों के आधार पर सही तरह से पर्यटन आरंभ हो सकेगा। यह ऐसा संयोग होगा जिसका इससे पहले अनुभव नहीं किया गया। सैर सपाटे के प्रेमी कोरोना महामारी का संकट खत्म हो जाने के बाद सबसे पहले इस बात का अवश्य पता लगाएंगे कि जब कोरोना फैला था तो उन क्षेत्रों में कोरोना का अभिशाप कैसा था जिन क्षेत्रों की वे यात्रा करना चाहते हैं। इसी तरह कोरोना से संबंधित दूसरे पहलुओं की समीक्षा के बाद ही वे पर्यटन व सैर सपाटे का कार्यक्रम बनाएंगे।
पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटक उन क्षेत्रों की यात्रा पर जाने को प्राथमिकता देंगे जो उनके रहने के स्थान से निकट होंगे। अगर वे कई दिनों की यात्रा पर जाना चाहेंगे तो वे गांवों की यात्रा का चयन करेंगे क्योंकि पर्यटक ये सोचेंगे कि शहरों की अपेक्षा गांवों का वातावरण अधिक सुरक्षित और भीड़भाड़ से दूर है। इस आधार पर प्रतीत ये हो रहा है कि पर्यटक शहरों की अपेक्षा सैर सपाटे के लिए गांवों का चयन अधिक करेंगे।
राष्ट्रसंघ की यूनेस्को संस्था ने घोषणा की है कि विश्व के संग्रहालयों को दोबारा खोलने के मार्ग में जो रुकावटें हैं उसने स्थिति को अधिक जटिल बना दिया है। अब इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि दुनिया के 10% संग्रहालय दोबारा शायद ही खुल पाएं। यूनेस्को से संबंधित दुनिया के 107 देशों में लगभग 1600 संग्रहालयों के संबंध में की जाने वाली समीक्षा इस बात की सूचक है कि कोरोना महामारी की वजह से दुनिया के लगभग सभी महत्वपूर्ण संग्रहालय बंद हो चुके हैं।
इस रिपोर्ट में आया है कि जो निजी संग्रहालय हैं, अगले महीनों में वे दिवालिया होने के खतरे से चिंतित हैं। 25% संग्रहालय इस बात से चिंतित हैं कि दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप ठीक होने तक वे बंद ही रहेंगे। यूनेस्को के महाप्रबंधक के सहायक अर्नेस्टो ऑटोने रेमिर्स ने इसी संबंध में कहा है कि मैड्रिड में प्राडो म्यूजियम जैसे दुनिया के बहुत से संग्रहालय पर्यटकों को जो टिकट बेचते थे उससे वे 70% कमाई करते थे। कोरोना के कारण जो हालात अस्तित्व में आए हैं उसके कारण वे कई महीनों से बंद पड़े हैं और भविष्य में उनकी वित्तीय दशा क्या होगी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
दुनिया के संग्रहालयों की जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद है उसने दुनिया के 107 देशों के 1600 संग्रहालयों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करके उनका विश्लेषण किया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कोरोना महामारी के काल में इन संग्रहालयों की क्या नीति रही है और दुनिया से कोरोना के खत्म हो जाने के बाद क्या नीति होगी। इसी प्रकार इस रिपोर्ट में यह भी आया है कि कुछ संग्रहालय अपनी गतिविधियों के बंद होने से पहले इस बात की सुविधा प्रदान कराते थे कि लोग ऑनलाइन उनका निरीक्षण कर सकते हैं। इसी प्रकार इस रिपोर्ट में यह भी आया है कि जो लोग संग्रहालयों में काम करते थे उनमें से अधिकांश दूर और अपने अपने घरों से काम करते थे और संग्रहालयों के जो जिम्मेदार हैं उनसे लगता है कि उनमें से अधिकांश ये सोचते थे कि उनकी नौकरी पक्की है, परंतु 16.1% को उनके कार्यों से अस्थायी रूप से निकाला जा चुका है। जिन लोगों को एग्रीमेंट पर रखा गया था उनमें से 22.6% के एग्रीमेंट को नहीं बढ़ाया गया। यहाँ तक कि संग्रहालयों के आधे से अधिक प्रबंधकों ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है उसके कारण वे संग्रहालयों में काम करने वालों के वेतन को विलंबित करने पर मजबूर हैं।
बहरहाल इस रिपोर्ट के अंत में आया है कि कोरोना महामारी के खत्म होने और उसके बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में काफी समय लगेगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये किया जा सकता है कि क्या दुनिया से कोरोना महामारी का कहर खत्म हो जाने के बाद दोबारा संग्रहालयों को देखने के लिए जो चहल पहल होती थी वो दोबारा पहले जैसे हो सकती है। इस प्रकार के दूसरे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब समय ही देगा। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
श्रोताओ ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی